यो राधा माधव कुंज बिहारी जयो गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जयो राधा माधव कुंज विहारी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जयो राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरनिताय 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 जय जगन्नाथ jagannatha baladeva jay subhadra Prabhupada jai jai Prabhupada Prabhupada ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 28 श्लोक नंबर 20 प्रबोधयति मा विज्ञम व्यूषिचित शोककर्षिता वर्तमेताद् गृहमेधियाम् वीरसूरपि नेष्यति प्रबोधयति मा विज्ञम व्यूषिते शोककार्षित वर्तमेतद् गृहमेधियम् वीरसूरपि नेष्यति प्रबोधयति मा विज्ञम व्यूषिते शोककार्षित वर्तमेतद् गृहमेधियम् वीरसूरपि नेष्यति माता जी प्रबोधयति अच्छी सलाह देती है मां मुझको अविज्ञम मूर्ख व्यूषिते मेरे बाहर जाने पर शोक शोक से कर्षिता दुख से सुखी हुई वर्तमान रास्ता एतत् यह गृहमेधियम गृहस्थियों के कार्यों का वीरसु वीरों की माता अपि यद्यपि नेष्यति क्या कर सकेंगे अनुवाद एवं तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा राजा पुरंजन सोचता रहा इसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उनकी पत्नी उसे अच्छा सलाह देती थी उसे घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी यद्यपि वह अनेक पुत्रों और वीरों की माता थी तो भी राजा को डर लग रहा था कि वह गृहस्थ का भार नहीं ढो सकेगी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहे हैं, यह दूषित चेतना कही जाती है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, मैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। बद्ध जगत में जितने भी जीव हैं मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन के साथ छह इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जीव आखिर परमेश्वर कृष्ण का ही अंश है। गुणात्मक रूप से कृष्ण और जीव की स्वाभाविक स्थिति एक जैसे है। अंतर इतना है कि जीव सदैव परमात्मा का सूक्ष्म कण है। मैं वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। इस बद्ध जीवन में संसार में परमात्मा का अंश ये जीवात्मा अपने दूषित मन और चेतना के कारण संघर्ष में लगा है। परमेश्वर का अंश होने से आशा की जाती है कि जीवात्मा कृष्ण के विषय में सोचेगा, किंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि जीव स्वरूप राजा पुरंजन केवल स्त्री के बारे में सोच रहे। किसी इंद्रिय विषय में ऐसी मानसिक व्यस्तता के कारण ही जीव को भौतिक संसार में जीवन संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो कार्य करता है उसके अनुसार उसको अगला जन्म पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी राजनेता अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत गलत काम करते हैं। विपक्षी दल के किसी व्यक्ति की हत्या कर देना किसी राजनेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यद्यपि ऐसे राजनेता को उसको अपने तथाकथित देश में जन्म लेने दिया जाता है, किंतु उसने अपने पूर्व जन्म जो पाप कर्म किया था उसके लिए कष्ट भुगतना पड़ता है। देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक विज्ञानियों के लिए पूरी तरह से अज्ञात है। देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों को बिल्कुल पता नहीं। वे तथाकथित वैज्ञानिक इस वस्तुओं के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि वे सूक्ष्म जीवन विषय पर जीवन के समस्या पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि उनका भविष्य बहुत अंधकार में है। इसलिए भविष्य के विषय में विचार करने में कतराते हैं, मना करते हैं, असामाजिक राष्ट्रिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहते। लगता है प्रभुपाद पॉलिटिकल सिचुएशन आज की भी जानते थे, भविष्यवाणी किए ना, पीपल मर्डरिंग। ओम अज्ञान्ति मिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामो हरे हरे। इतना जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से थोड़ा कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, दर्शन आरती के समय 7:30 क्लास का 8 तो अच्छा, इसका मतलब जप के लिए ज्यादा समय मिल सकता है, ठीक है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम सवेरे ही जप करें और ये थोड़ा परिवर्तन इसके लिए अनुकूल है, तो ज़्यादा समय ठीक है, तो ऑलमोस्ट नाउ 2 आवर्स नहीं, 5:30 to 7:30, ठीक है। एक बार फिर जब दर्शन आरती गोविंदम गोविंदम आदि कृष्ण के बाद फिर जप करना, थोड़ा स्पिरिचुअल सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर इट्स वेरी नाइस स्टेप दैट द मैनेजमेंट हैज टेकन, यू गेट मोर टाइम फॉर चैंटिंग। You always think like this, हमेशा हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम चैंटिंग को बढ़ा सकें, जप को बढ़ा सकें, क्वालिटी में और क्वांटिटी में। एक्चुअली इसमें तात्पर्य का एक भाग गलती से मैंने दूसरे फर्स्ट भाग करेक्ट था, लेकिन दो पेज एक साथ होने के कारण जस्ट थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा रह गया था। चूंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ। जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया कि राजा जो थे वो अपने पत्नी के विचार में लीन रह रहे थे, तो अगले जन्म में वो स्त्री बन जाते, पुरंजन बिकम्स अ वुमेन इन द नेक्स्ट लाइफ बिकॉज थिंकिंग ऑफ हिज वाइफ। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और जातीय भाव में मन को लीन रखना ही बंधन का कारण है, और बंधन को छुटकारा पाने के लिए हमें जीवन काल में अपने कार्य को बदलना होगा। प्रभुपाद जी भगवद्गीता का वह श्लोक बताते हैं, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना को नहीं बदलते तो फिर सामाजिक, राष्ट्रिक और धार्मिक कार्यों के नाम पे कार्य कर रहे हैं तो हमारे बंधन का कारण बन जाता है। प्रभुपाद जी बोले इवन धार्मिक कार्य भी अगर वो वास्तविक धार्मिक नहीं है लेकिन इंस्टीट्यूट है जिसमें प्योर धर्म नहीं सिखाया जा रहा तो बंधन का कारण है। इसका अर्थ है कि अगले जीवन में हमें फिर भौतिक बद्ध जीवन स्वीकार करना पड़ता है। मन शष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। जब मन और इंद्रियां भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है, सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में मनुष्य सुखी रहने के लिए संघर्ष करता है। वास्तव में इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, किंतु संघर्ष में से सुख की झूठी प्रतीति होती है, मतलब लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूं। मनुष्य को कठिन मेहनत करना पड़ता है और जब उसे फल मिलता है तो उसको लगता है कि मैं सुखी हो गया हूं। इस संसार में वास्तविक सुख है ही नहीं। सुखम आत्यंतिकम यद ग्रायतम इंद्रियम। वास्तविक सुख का मतलब है कि दिव्य इंद्रियों द्वारा होती है। जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता तब तक दिव्य इंद्रिय नहीं मिलते, तो दिव्य इंद्रिय नहीं आते तब तक वो अनुभव का नहीं कर सकता सुख का। इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए कृष्ण भक्ति करनी होगी और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, तब वास्तविक सुख मिलेगा। अंत में प्रभुपाद जी भगवद्गीता का श्लोक बताते हैं कि 15वें अध्याय में, शरीर यद अवाप्नोति इच्छाप्रु क्रमति ईश्वर गृह त्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासी। एग्जाम्पल दी हवा का, जैसे हवा चलती है और वो गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाती है, ऐसे जीव सारे विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। यानी मेरी जो मेंटेलिटी है, मैं मरने के बाद भी वो दूसरे शरीर में लाइक कैरी फॉरवर्ड, वी आर टेकिंग इट टू नेक्स्ट वर्ल्ड। यदि वायु समझो कोई गुलाब के सुंदर बगीचे के पास से गुजरती है तो अच्छी अच्छी सुगंध लेकर जाएगी, और यदि वो गंदे स्थान से बहती है तो दुर्गंध ले जाती है। इसी प्रकार जो जीव है, पुरंजन यानी जीव जो है अपने प्राण वायु को अपने पत्नी पर प्रवाहित करता है, इसलिए उसे अगले जीवन में स्त्री का शरीर धारण करना बहुत पर्पस है। प्रभुपाद जी का हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या चीज सोच रहे हैं। कि जो विचार आता है अंत समय में वही हमारा अगला जन्म हो जाता है। और पता नहीं कब आखिरी क्षण आएगा, वी डोंट नो। इस समय मैं क्या सोच रहा हूं, हो सकता है वही अच्छा विचार हो। मैं मंदिर में बैठा हूं, मैं मंदिर में सोच रहा हूं भागवत के बारे में, मैं भागवत की कथा में इंटरेस्ट ले रहा हूं, नाम के बारे में सोच रहा हूं, डीटीस का दर्शन कर रहा हूं। इस समय मृत्यु हो जाए तो कितना अच्छा है, नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी हो जाए, आप सबकी जरूरत है हमें बहुत साल, लेकिन ऐसे समय हो कि जब भगवान याद कर, भगवान के याद हो रहा हो, एक पूरा लाइफ एक रील की तरह पूरा रील घूम रहे, अलग अलग विचार आ रहे हैं, कहाँ पे क्लिक होगा पता नहीं, और वो फोटोग्राफ वो फिर व्हाट्सएप पे अपलोड हो जाएगा, गोलोक वृंदावन नेक्स्ट बर्थ। दैट इज सो केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हर समय भगवान को याद करें। भगवान का अरेंजमेंट है कि आज ये श्लोक यहाँ पे आया, क्योंकि कुछ महीने पहले मैं हमारे एक दादा गोपीनाथ मंदिर कांग्रेगेशन से जुड़े हुए एक भक्त हैं, उनका भी अभी फरवरी के महीने में उनका दीक्षा हुआ था, गोविंद प्रिय प्रभु। तो वो पहले दिल्ली में रहते थे और उनके मदर जब दिल्ली में थे तब उन्होंने सोला माला जब शुरू किया, करीब तीन साल पहले, और भगवान के अरेंजमेंट से वो जप कर रहे थे बहुत अच्छा मुंबई में आने के बाद, और अचानक उनको कैंसर हो गया। जानते हैं कि कैंसर ऐसी भयानक बीमारी है कि उसमें न केवल बीमारी का कष्ट है, उसका ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है, उसकी जो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं बहुत पेनफुल है। इट्स लाइक मेरे को एक भक्त बता रहे थे, ऐसा लगता है कि कोई आपको रेजर से बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, रेजर से। इट्स लाइक समटाइम्स मेरे पिताजी को भी कैंसर हो गया था और उसी से उन्होंने फिर देह त्याग किया। पहली बार तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, सेकेंड बार उन्होंने बोला कि शरीर छोड़ना ज़्यादा आसान है, इट्स सो पेनफुल। तो ये माता जी जो इनिशिएटेड भी नहीं थे लेकिन बहुत सिंसियर डिवोटी, मे बी 65 या 70 के आसपास उम्र गई, सिंसियरली जब कर रही, पता चला कीमोथेरेपी ले रहे हैं, दर्द हो रहा है, और हमेशा कैंसर मतलब पोटेंशियल डेथ होता ही है, फिर वो जब सीरियसली करे थे पेनफुली, एक एक माला करने में समय ज़्यादा लगता है पेन के कारण, कई बार 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते, फिर भी वो कभी शाम हो जाए रात हो जाए लेकिन जब पूरा करना। तो फरवरी के महीने में जब मुंबई में कुछ कार्यक्रम थे, कुछ भक्तों का दीक्षा था वाड़ा में, तो उसके बाद मैं वापस लौट रहा था और उनका घर बोरीवली में, मैं उनसे मिलने के लिए गया था, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं दर्द हो या दर्द नहीं हो वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको भूलूँ नहीं, आपका स्मरण रहे हमेशा, स्पेशली अंत समय। तो ये फैमिली जो हमारे मुंबई में एक सीनियर भक्त हैं श्रीदामा प्रभु, उनके काउंसलिंग हैं। तो उस समय क्या हुआ कि परम पूज्य राधानाथ महाराज जब वाड़ा से लौट रहे थे तो वो बोरीवली में श्रीदामा प्रभु के घर में, और श्रीदाम प्रभु ने बताया कि ऐसे एक माता जिनको बहुत पेनफुल है, पता नहीं क्या हाउ मच टाइम कितना होगा, तो महाराज ने उनको बुलाया, जस्ट मेरे से बात कर रहे थे और फिर मैसेज आया, उसके बाद वो महाराज से मिलने गए और उन्होंने महाराज से यही वरदान मांगा कि महाराज मुझे पता नहीं कितना मेरा समय है, तो मुझे यही वरदान दो कि अंत समय में मुझे भगवान के चरण याद है। और उस समय उनको पता नहीं था क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह 5 साल 10 साल और रहेंगे, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई गारंटी नहीं। जब पूरा ट्रीटमेंट अच्छा हो गया और आज से करीब 2-3 हफ्ते पहले पता चला कि रिलैप्स हो गया कैंसर फिर से आ गया, और इस पर वो फिर कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई कर रहे थे और लग रहा था कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो पिछले शनिवार को हेल्थ थोड़ी ख़राब हुई, रविवार को और ज़्यादा, और फिर सोमवार को कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे और सवेरे के समय 10-11 बजे के समय देह त्याग करना। मैं सोच रहा था कि ये माता जी ने ऑफिशियली कोई दीक्षा नहीं ली है, लेकिन इन्होंने शास्त्रों का जो एसेंस समझ लिया है, शास्त्रों का सार क्या है, दो लाइन में स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचि, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट कृष्ण, बस ये दो लाइन पता है तो आप भगवत धाम जा सकते। और उन्होंने हालांकि दीक्षा नहीं ली, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा आशीर्वाद मांग लिया महाराज से, मुझे अंत समय भगवान याद है, दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। बड़े बड़े आचार्य भी यही प्रार्थना करते हैं कि अंत समय भगवान के चरण याद है। हो सकता है कि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हों और दूसरों को पढ़ाया भी हो, लेकिन मैं शास्त्रों के निष्कर्ष को नहीं समझ पाऊं, यह समझ भी लूं तो हो सकता है उसका पालन नहीं कर सकूं। तो मेरा बहुत बहुत आदरपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि भगवान मुझे उनके द्वारा सिखा रहे हैं कि बड़ा बड़ा प्रचारक बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आप प्रचार कर रहे हैं पहले स्वयं समझिए एसेंस क्या है भक्ति का, मन मना भव मद भक्त। आज के पर्व में प्रभुपाद जी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि वही निश्चय करते हैं कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। एक हमारे इस्कॉन में एक डिवोटी है जो एक परम पूज्य भक्तिचरण महाराज के डिसाइपल है, एक माता जी जो बहुत सिंसियर सेवा कर रहे हैं अभी, और उन्होंने ऐसे एक बार उनके गुरु महाराज के बोलने पे या उनको खुद को बहुत विचार आ रहे थे पहले लंदन के टेंपल के, तो किसी ने उनको कुछ थोड़ा सा सुझाव दिया कि क्या ऐसे पूरे जन्म के बारे में, तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करने पे उनका कंक्लूजन हुआ कि पूरे जन्म में वो लंदन में एक ब्रह्मचारी थे। आपने सुनिए कहानी नहीं सुनी, करेक्ट ना, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, पुजारी जी राधा वृंदावन चंद्र यश बोल रहे हैं, ये स्टोरी है बहुत रिकॉर्डेड कि उनको एक्चुअली लंदन में एक भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा भी ली थी और जस्ट दीक्षा के एक साल बाद या थोड़े समय बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद उनको ये शरीर मिला। कंक्लूजन ये है कि उन्होंने अंत समय में उसी वहां पर कोई एक माता जी थे तो उनका विचार आया उनको मृत्यु के समय, तो अगला शरीर उनको एक स्त्री शरीर स्त्री के रूप में प्राप्त हुआ। मतलब ये साइंस कितना परफेक्ट है और बहुत डेंजरस भी है जानना, है ना, हमें पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं, दिन में कितने सारी चीजें विचार आते। तो और वो जो अभी जो भक्त बने हैं उनका शरीर और ये जो माता जी जो इसके बारे में सोच रहे थे, दोनों का शरीर मिलता जुलता है। हरे कृष्ण, इतना वेरी स्ट्रेंज है, आप किसी से मिलते हैं जिनका सिमिलर है। तो ऑफकोर्स अभी तो बहुत अलर्ट है कि अभी कृष्ण के बारे में ही सोचना है। जनरल प्रोसेस क्या होता है जो गृहस्थ आश्रम में होता है कि पुरुष जो स्त्री के बारे में सोचते हैं, स्त्री पुरुष के बारे में सोचते हैं, और फिर पुरुष स्त्री बनता है, स्त्री पुरुष बनता है, चक्र चलता रहता है। लेकिन जो भक्त इंटेलिजेंट है आपकी तरह, वो राधा वृंदावन चंद्र के बारे में सोचते हैं, चाहे आप राधा रानी के बारे में सोचिए, वृंदावन चंद्र के बारे में सोचिए, दोनों परफेक्ट है और आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की प्राप्ति है। दिस साइंस इज वेरी वेरी परफेक्ट। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजयन्ति कलेवरम, क्या चीज का हम विचार करते हैं वैसा शरीर। भरत महाराज ने इतनी भक्ति की थी, भरत महाराज तो प्रैक्टिकली वसंदी भाव स्टेज ना, भाव स्टेज पे थे, दैट मीन्स अधो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया नर्त निवृत्ति सब हो गया था उनका, रुचि निष्ठा भाव के स्तर पर थे। और जब वो भगवान की भक्ति कर रहे थे उनके अंदर सब लक्षण प्रकट हो रहे थे, लेकिन आप कथा को जानते हैं कि उन्होंने एक हिरण के बारे में सोचा, गलती नहीं की, एक हिरण की मृत्यु हो रही थी छोटे बच्चे की, पानी में डूब रहा था, उसको बाहर निकाला, क्या उन्होंने गलत किया है? ये तो डिवोटी भक्ति नहीं, एक नास्तिक व्यक्ति भी इतनी दया दिखाएगा, कोई डूब रहा है उसको बचाना, वो वो स्टेप गलत नहीं था, लेकिन गलती क्या हुई कि वो उससे आसक्त हो गए। स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेरेंट लगेगा कि वो तो बहुत अच्छे थे, यू आर केयरिंग, यू नो, स्पिरिचुअल केयर कर रहे हैं, मेटीरियल केयर कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, उनकी स्वयं की भक्ति वो भूल गए। मंगल आरती में डियर, जप में डियर, माय डियर डियर, तो हिरण के विचार में लगे हुए थे। कहीं अरे वो देखो कोई जानवर आक्रमण तो नहीं कर रहा होगा उसको, उसको खाने के लिए मिला कि नहीं मिला। तब ये प्रवृत्ति हमारे अंदर भी आ सकती है, स्पेशली अगर कोई गृहस्थ आश्रम में, तो जिम्मेदारियां हैं वो सोचना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो सोचना गलत है, हर व्यक्ति को परिवार के सदस्य से आसक्ति होना स्वाभाविक है, बिना आसक्ति के परिवार में रह ही नहीं सकते। लेकिन हमारा जो परिवार के सदस्यों के प्रति जो आसक्ति है, उससे ज्यादा आसक्ति कृष्ण के प्रति होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नेचुरली अटैचमेंट एक दूसरे के साथ, लॉकर के साथ भी, पोजेशंस के साथ भी, लेकिन जितना अटैचमेंट एक दूसरे के साथ है, उससे ज्यादा अटैचमेंट डीटीज के साथ होना चाहिए। राधा वृंदावन चंद्र के साथ, गौर नेताई के साथ, या हरे कृष्ण मंत्र के साथ। इसलिए पुजारियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती, पुजारी के लिए भगवत धाम जाना बहुत आसान हो जाता है, वो दिन रात भगवान के बारे में सोच रहे हैं। हमारे रूप गोस्वामी प्रभु मोर देन 25 ईयर्स डेडिकेटेड हैं, पहले राधा गोपीनाथ टेम्पल में, फिर कुंज बिहारी में, यहाँ पे, तो उनके मन में हमेशा ही विचार रहता है कैसे डीटी वर्शिप इम्प्रूव किया जाए, कैसे भगवान को ऑफरिंग और सुधारी जाए। तो ये विचारधारा जो है ये भगवान से डायरेक्टली रिलेटेड ईजी हो जाता है डीटी वर्शिप। श्री शिल प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे, प्रभुपाद वृंदावन में रात के समय विश्राम कर रहे थे, और रात के समय 12 बजे उठे और अपने सेवक को बोले कि एक भक्त को बुलाओ, क्या नाम था उनका, ओंकारानंद, है ना, ओंकारानंद, इस कॉल ओंकारानंद, वो हेड पुजारी थे, उनको बुलाया। रात के समय प्रभुपाद बुला रहे हैं, मतलब कुछ तो विशेष कारण होगा। प्रभुपाद ने सिर्फ एक वाक्य बोला, यू नो व्हाट ही सेड, पुजारी इज मोस्ट फॉर्चुनेट। प्रभुपाद जी बस वन वाक्य बोले, प्रभुपाद जी का एक वाक्य है वो बड़े भागवत क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुजारी कितने भाग्यशाली जिसको भगवान की दया से अगर ये सौभाग्य प्राप्त होता है, श्री विग्रह आरा धन नित्य नाना, तो बहुत ब्लेसिंग है, ग्रेट ब्लेसिंग, इट्स इजी टू रिमेम्बर कृष्ण। लेकिन साथ साथ कोई भी हम सेवा कर रहे हैं तो हम अटैचमेंट रख सकते हैं ड्यूटीज के साथ, यू हैव टू डेवलप दिस अटैचमेंट। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवेरे के कार्यक्रम में हम पहले सुबह आधा घंटा पूरे ड्यूटीज की तरफ हमारा ध्यान फोकस्ड रहता है। और यहाँ के ड्यूटीज राधा वृंदावन चंद्र स्पेशली इतने सुंदर है कि अगर हम उनकी सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो फिर हमें भौतिक सुंदरता ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। रामानुजाचार्य के जीवन में कहानी है कि एक भक्त थे, पहले भक्त नहीं थे, वो एक रेस्लर थे, मतलब पहलवान थे, और वो एक स्त्री के प्रति बहुत आसक्त थे। क्या नाम था उनका, धनुर्दास, लेटर ऑन धनुर्दास, बट अर्लियर ऑल्सो, पहले भी धनुर्दास। तो धनुर्दास वॉज यू नो अटैच टू वन वुमेन, नॉट इवन मैरिड, बट जस्ट लाइक दिस, ऐसे अटैच। और वो ऐसे था कि जब भगवान रंगनाथ जी की यात्रा हो रही है, कोई शोभा यात्रा, तो भी वो उस स्त्री के प्रति ही देख रहे थे। सब लोग देख रहे हैं भगवान का प्रोसेशन चलता है। मैं श्रीरंग में पिछले हफ्ते, पिछले 3-4 महीने पहले गया था, मैं एक्चुअली तिरुपति गया था दर्शन के लिए, और फिर दिल्ली के कुछ भक्त आए थे, बोले तिरुपति से थोड़ी दूर कांचीपुरम में, मैं कांचीपुरम चला गया, बोले कांचीपुरम से थोड़ी दूर श्रीरंगम में, तो फिर मैं श्रीरंगम चले गए। फिर उन डिवोटीज का टिकट कंफर्म था, वो चले गए, मुझे टिकट ही नहीं मिला 7 दिन के लिए। तो भगवान का प्लान था कि 7 दिन तक मैं श्रीरंगम में रहा, और रोज वो समय वो था जब बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे थे, हर रोज भगवान के जो छोटे विग्रह हैं उनको बाहर निकालते थे और प्रोसेशन करते। एक दिन तो ऐसा प्रोसेशन करते हैं डीटीज का कि डीटीज को ला के उनको गोल गोल घुमाते हैं, मतलब ये पुजारी हैं पालकी में ले रहे हैं भगवान को, और पुजारी ऐसे एक प्लान्ड तरीका होता है, मैन्यूवरिंग करते हैं। आपने सुना है इसके बारे में, ऐसे जाते हैं, ऐसे दे गो लाइक दिस राउंड 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 राउंड, कहते हैं कि डीटीज गोल गोल घूम रहे हैं. दिस इज इज वेरी, मतलब डिवोटीज छत के ऊपर, दुकानों के ऊपर, मंदिर के जो बैठने की जगह वहां से सब दर्शन कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा है. साउथ इंडिया में कल्चर है डीटी वर्शिप, स्पेशली सिख संप्रदाय में कांचीपुरम, तिरुपति और श्रीरंगम. तो अभी ये आपको पता होगा शायद कि कांचीपुरम में वरदराज स्वामी की जो डीटीज हैं, जो अति वरदराज, जो ओरिजिनल वुड की डीटीज हैं, जो ब्रह्मा जी की अग्नि के द्वारा प्रकट हुए थे, वो पानी के अंदर छिपाए रखे जाते हैं और 40 साल में एक बार बाहर निकालते हैं. वंस इन 40 ईयर्स. लास्ट टाइम 1979 में निकाला था. आप में से कितने भक्त थे 79 में? आप सभी थे, खाली आपका शरीर दूसरा था. हो सकता है आप में से कोई उस डीटी के उसमें पुजारी भी रहे होंगे. 79 में तो मुझे दर्शन नहीं हुए, 79 में बॉम्बे में था. और नेक्स्ट दर्शन 2059 में है. कितने भक्त रहेंगे 2059 में? हरे कृष्ण, मैं तो नहीं होंगे डेफिनेटली. इसलिए ये अच्छा समय है. 40 साल में एक बार ड्यूटीज को निकालते हैं और 48 दिन के लिए, और वो पीरियड है जुलाई 1, 2019 से लेकर अगस्त 15 या 17 तक. आप में से किसी भक्त ने किया दर्शन? आई थिंक एक भक्त गए थे हमारे, बट इज द डिवोटीज नेम इज पुजारी. हाँ, यू हैव बीन देयर प्रभु, आप यू कैन गिव अ क्लास ऑन दैट. ये नाइस दर्शन प्रभु, और सुंदर दर्शन है. ऑफकोर्स एक चैलेंज है कि भीड़ इतनी है कि गवर्नमेंट का एस्टिमेट 20-30 हजार था, रोज 1.5 लाख लोग आ रहे हैं अभी दर्शन के, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थोड़े लिमिटेड है. रथ यात्रा में जैसे पूरी में भीड़ होती है, उससे ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि जगह छोटी है. रथ यात्रा में रोड ग्रैंड रोड है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे से रोड्स हैं, और सैनिटेशन, टॉयलेट्स वगैरह और पीने के लिए पानी, थोड़ी डिफिकल्टीज, लेकिन फिर भी डिवोटीज का इतना उत्साह है. तो पता चलता है कि कृष्ण भावना नेचुरल है. सब लोग अलग अलग स्थानों से, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, जहाँ से भी हो सके दर्शन के लिए आ रहे हैं. इनफैक्ट पिछले सप्ताह हमारे भारत के प्रेसिडेंट वहाँ पे गए, और अगले 23 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह ये सब भी जा रहे हैं दर्शन के लिए. तो और भी ज़्यादा कवरेज है. अगर आप में से कोई नहीं गए, जाना चाहते हैं, तो आप जरूर जाइए. मैं भी जाने की सोच रहा हूँ, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था. अभी एक डिवोटी मुझे मिल गए, श्रीनिवास ईसियर, चेन्नई के एक डिवोटी, वो बोले कि वो एक वीआईपी पास अरेंज कर सकते हैं. वीआईपी पास हो तो 2-3 घंटे में हो जाते. बट इट्स वेरी नाइस टू बी अटैच टू डीटीस. मैं वो कहानी बता रहा था, ये जो रेस्टलर धनुर्दास थे, वो उस स्त्री के प्रति इतने आसक्त थे, और कॉन्सेंट्रेशन, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक है गुरुनंद, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, जस्ट फोकस्ड. बाकी सब लोग प्रोसीजन में जा रहे हैं, वो इतने हैं, मतलब यू नो, जैसे आप उसको निर्लज भी बोल सकते हैं या आप डेडिकेटेड बोल सकते हैं, डिपेंड किस तरह से, यू आर टोटली फोकस्ड. सब लोग को बड़ा आश्चर्य, सबने रामानुजाचार्य को बोला कि ये व्यक्ति देखो भगवान की शोभा यात्रा हो रही है, उसको नहीं देख. तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि आप क्यों इस तरह से, भगवान की यात्रा हो रही है और आप स्त्री की तरफ देख रहे हैं. तो उन्होंने बहुत सरलता से बोला कि उनकी आंखें बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उनके अंदर छल कपट नहीं था. ही वॉज मे बी ही वॉज पतित बट नॉट कपटी. गुरु गोविंद महाराज बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु इज पतित पावन बट नॉट कपटी पावन. इफ वी आर वेरी वेरी डिग्रेडेड, हम बहुत पतित भी हैं, लस्टी डिजायर्स हैं, क्रोध है, लस्ट है सब, लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्लीज आई एम वेरी डिग्रेडेड, मैं बहुत पतित हूँ, मेरा उद्धार करो. हम कोई ढोंग नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे हैं हमारे अंदर नर, उसमें क्या क्या कर सकते, भगवान दूर कर देते. लेकिन अगर हम कुछ स्वांग रचने का प्रयास करते हैं और अपने आप को ज़्यादा एडवांस बताने का प्रयास करते हैं, तो फिर कृपा मिलना मुश्किल है. तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि मैं उनको आपको उनसे ज़्यादा सुंदर कोई व्यक्ति दिखाऊंगा. बोले ठीक है, फिर मैं उनके साथ रहूंगा. तो उनको अंदर ले गए गर्भगृह में, जहाँ पर रंगनाथ जी हैं. एक्चुअली रंगनाथ जी के जो विग्रह हैं, टोटल ऐसे तीन तीन रंग है, आदि रंग, मध्य और आदि मध्य अंत ऐसे तीन है। देर आर थ्री रंगनाथ डीटीज। एक डीटीज रंगनाथ है, एक मेलकोटे के रास्ते पे मैसूर से पहले श्रीरंग पटना है वहां पर भी है, और तीसरा भी है आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लोकेशन। दिस थ्री डीटीज आर देर, दे आर ऑल इन द सेम पोस्चर। तो ये तो रंगनाथ जी की ड्यूटी से बहुत बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये एक्चुअली ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए ड्यूटी से, फर्स्ट ड्यूटी जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे, बाद में ब्रह्मा जी ने रघुवंश में दिए। तो जब उनको वहां पर ले गए, भगवान को देखने के लिए भी आंखें चाहिए होती है। हम भगवान को देख भी रहे हैं लेकिन हमारे आंखें ही शुद्ध नहीं है, तो हम नहीं देख रहे। ड्यूटीज को भी देखना अलग अलग होता है। मैं भी देख रहा हूँ, मेरे हृदय में इतने अनर्थ हैं तो मैं रिस्पेक्टफुली देख रहा हूँ कि यस मुझे पता है कि भगवान है, लेकिन मेरे अंदर वो प्रेम के विकार नहीं है, मैं भगवान से बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे ही कोई बहुत एडवांस डिवोटी है, साक्षी गोपाल की कहानी में जैसे ब्राह्मण थे, तो भगवान से बातचीत कर लेते हैं। भगवान को बोलते हैं चलो अभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, यू हैव टू कम अपीयर इन हाई कोर्ट विद्यानगर में आना। भगवान बोलते हैं मैं नहीं चल सकता, मैं मूर्ति हूँ, मूर्ति नहीं चलते। बोले ठीक है, मूर्ति तो बोलते भी नहीं है, आप बोल सकते हो चल भी सकते हो। तो भगवान को डिफीट कर दिया आर्ग्यूमेंट में। तो कितनी सारी कहानी है शास्त्र में कि डीटीज बातचीत करते हैं। तो रामानुजाचार्य विशेष कृपा करते हैं उस धनुर्दास पर, उसके कारण धनुर्दास भगवान को देख सकते हैं और अट्रैक्ट रहते। बोलते बस मैं अभी इनकी सेवा करना चाहता हूँ, बोलते मुझे कुछ लेना देना नहीं है स्त्री के साथ। लेकिन रामाचार्य बोलते नहीं, क्योंकि आप पहले उनके साथ रहे हैं, अब आप उनके साथ रहिए, विवाहित जीवन बिताइए, और फिर वो इतने भक्ति में एडवांस बन जाते हैं जस्ट भगवान के कृपा से, गुरु की कृपा से। एक्चुअली स्पिरिचुअल आइज चाहिए भगवान को देखने के लिए, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, गुरु की कृपा से आध्यात्मिक नेत्र मिलते हैं जिससे भगवान को देख सकते, और फिर वो इतने परम विरक्त हो जाते हैं। आपको कहानी मालूम है कि एक बार रामानुजाचार्य जब भी जाते हैं कावेरी स्नान के लिए तो धनुर्दास के गले में हाथ डाल के जाते हैं, उनको इतनी कृपा देते हैं। बाकी जो ब्रह्मचारी और सन्यासी सोचने लगते हैं कि हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं और ये यू नो नए भक्त हैं, यू नो पीडीसी भी नहीं हुआ है, यू नो जस्ट कम, और उसको इतनी कृपा मिल रही है, तो मेंटली वो ऑफेंस कर रहे थे। रामानुजाचार्य दिखाना चाहते थे। एक बार उन्होंने जो ब्रह्मचारी थे उनका कैसे अरेंजमेंट किया कि रात के समय उनके कपड़े थोड़े इधर उधर हो गए या कुछ भाग गायब हो गए, तो बड़ा झगड़ा हो गया कि अरे हमारे कपड़े कहाँ चले गए। और उसी दिन शाम के समय रामानुजाचार्य धनुर्दास को अपने पास में बुला लेते हैं, और जब घर में उनके पत्नी अकेले है तो दो भक्तों को भेजते हैं कि आप उनके आभूषण लेकर आओ। तो उनके पत्नी लेटे होते हैं, वो सोए नहीं होते हैं, आंखें बंद होते हैं, तो धीरे से जाकर उनके आभूषण चुराने लगते हैं। तो उनको लगता है ये तो मंदिर के भक्त हैं, भगवान के लिए ले रहे होंगे, क्या भगवान की प्रॉपर्टी, भगवान का ही ईशवास्यम इदम सर्वम, बड़े खुशी से तैयार हो जाते देने के। और दूसरी ओर एक तरफ से निकाल लेते हैं, दूसरी ओर तरफ जो हिलते हैं तो सबको वापस डर के मारे आ जाते। रामानुजाचार्य अब भक्तों को बोलते हैं कि तुम जाके देखो, ये धनुर्दास को जब पता चलेगा कि उनके पत्नी के सारे ऑर्नामेंट्स सारे सोना चुराया गया तो क्या उसका रिएक्शन। जब जाकर देखते हैं तो धनुर्दास को जब समाचार मिलता है तो बहुत खुश होते हैं, अच्छे भगवान की सेवा अर्पण हो गए, आपको सब कुछ देना चाहिए। वैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी व्यक्ति वैरागी हो सकता है, तो बहुत कॉशियसली जीवन बिताना चाहिए। हमें से निश्चय करना चाहिए कि मुझे वापस नहीं आना है संसार, कुछ भी छोटी सी भी आसक्ति रह गई तो मुझे आना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इवन इफ यू आर अटैच टू वन रसगुल्ला, एक रसगुल्ला की भी आसक्ति रही तो पुनर्जन्म हो जाएगा, मे बी बंगाल में कोई स्वीट शॉप में हो जाए या गोविंदास में भी हो सकता है, यू कैन गेट रसगुल्ला। किसी को तुम जो पिज्जा से आसक्ति होती है इटली में जन्म हो सकता है, वराइटीज ऑफ पिज्जा। किसी को छोले भटूरे से आसक्ति हो तो पंजाब में जन्म हो सकता है, किसी को इडली डोसा तो कर्नाटक में हो सकता है ना। यू वेरी केयरफुल। मैं नहीं बोल रहा कि हमें कोई प्रसाद से आसक्ति होना गलत है, लेकिन जितना आसक्ति प्रसाद से है या कोई और चीज से है उतनी ज्यादा आसक्ति भगवान के नाम से होना चाहिए। अंत समय में क्लियरली निकलना चाहिए मुंह से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जस्ट क्लियरली भीष्म देव की तरह। भीष्म देव जब शरीर छोड़ रहे थे और भरत महाराज शरीर छोड़ रहे थे, दोनों में अंतर क्या है? भरत महाराज शरीर छोड़ते समय वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, वो हिरण बन गए। भरत महाराज की गलती यही थी कि वो उन्होंने घर त्याग किया, वो गलत नहीं था, लेकिन वो एसोसिएशन में नहीं थे, भक्तों के संग में नहीं थे। भक्तों के संग में होते तो कोई ना कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता उनके बारे में कि आ नहीं रहे मंगल आरती में। अगर कोई हमारे बारे में कंप्लेंट करे तो हमारे बहुत अच्छे सौभाग्य की बात। और दूसरी ओर भीष्म देव हमेशा भगवान के भक्तों के साथ में ही थे, और अंत समय में पांचों पांडव उनके पास आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, साक्षात भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण को देखकर भगवान की सारी लीलाओं को याद करने लगे, उखल बंधन लीला को याद कर रहे थे। वो याद कर रहे थे कैसे कृष्ण जब गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, वो याद करने लगे महाभारत के समय जब अर्जुन का जीवन खतरे में था और भीष्म देव बहुत भयानक युद्ध कर रहे थे, अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी, और उस समय भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। क्या वचन लिया था भगवान ने? कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो वचन को तोड़ दिया और अर्जुन की रक्षा के लिए एक टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर मारने दौड़े भीष्म को, जैसे एक शेर हाथी की तरफ दौड़े। तो ये सब दृश्यों को याद कर रहे और बोल रहे हैं कि अब मेरा मन भगवान के चरणों में केंद्रित है। ये कितना अच्छा ग्लोरियस डिपार्चर है। ये हमारी हमारे लिए एक आइडियल है, ये हमें सोचना चाहिए कि हमारी अवस्था होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का तिरुभाव। हरिदास ठाकुर पहले ही भगवान से बोलते हैं कि मैं आपके पहले जाना चाहता हूं, मैं आपकी तिरुभाव लीला नहीं देखना चाहता। चैतन्य महाप्रभु पहले तो बोलते हैं नहीं हरिदास, मैं धरती पे आया हूं आप जैसे भक्तों के लिए, अगर आप चले जाओगे तो मैं लीला किसके साथ करूंगा। हरिदास ठाकुर भगवान के चरणों को पकड़कर बोलते हैं प्रभु आप मजाक मत करो, आपके साथ इतने सारे महान भक्त हैं, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, राम सर्वम भट्टाचार्य, ऑल दिस डिवोटीज आर फिट टू सिट ऑन माय हेड, ये मेरे सिर पे बैठने के लायक है, इतने महान भक्त हैं। अगर एक चींटी की मृत्यु हो जाए तो क्या नुकसान हो जाता। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब नेक्स्ट डे सब भक्तों को बुलाया और कीर्तन किया, हरिदास का गुणगान करने लगे, और फिर अंत में हरिदास भगवान को पास में बुला के छाती पे उनके चरणों को रखकर श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं। सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस था, उनका भी डिपार्चर कितना ग्लोरियस था, शायद मंगलवार को आपने सुना होगा उनकी महिमा। सनातन गोस्वामी एक आइडियल वैष्णव है कि करोड़पति प्राइम मिनिस्टर थे, मोर देन करोड़पति, और सबको त्याग दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करने के लिए, त्यक्त्वा तूर्णम् अशेष्य मण्डलपतिः। फिर ब्रजवासी बन गए, ब्रज में रोज गोवर्धन परिक्रमा करते। अभी हम साल में दो तीन बार करते हैं, थकावट होती है, पहले प्लानिंग करना होता है। अभी इस बार मैं गया था वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा के सनातन गोस्वामी के दिन, ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा 12 जुलाई से 16 जुलाई, इतना भीड़, इतनी भीड़। मैंने सुना है कि 4 दिन में 20-25 लाख भक्त परिक्रमा करते, पिछली रात के समय और भी ज्यादा। तो मैं तो सोचा था परिक्रमा कर पाऊंगा कि नहीं, चलो जाके देखते हैं, लेकिन ये है कि मैं सवेरे के समय गया और देखने के लिए गया, पता ही नहीं चला परिक्रमा पूरी हो गई, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि आपको चलना नहीं पड़ता, जस्ट इट्स लाइक अ रिवर, 5 घंटे में परिक्रमा हो गई। नेचुरली सो मच एंथुसियाज्म डिवोटीज है। सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते। एक बार भगवान श्याम सुंदर बोले, सनातन आप बूढ़े हो गए हो, अभी करने की जरूरत नहीं है अब आप। सनातन बोले नहीं, मैं नहीं चाह सकता। तो भगवान ने अपने कृपा से एक अपनी चरणों से एक शिला दी, गोवर्धन शिला, जिसपे उनके चरण अंकित थे, बताया इसकी आप 4 बार परिक्रमा करो तो एक गोवर्धन परिक्रमा के बराबर है। ऐसे शास्त्र में बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए गए, यू कैनॉट डू दिस यू डू दिस, यू कैनॉट डू दिस यू डू दिस, लॉर्ड इज वेरी काइंड। सनातन गोस्वामी कभी कभी लोगों के घर में जाते, गांव में, सब जिस गांव में आते तो वहां पर इतनी भीड़ मच जाती थी, और जिस घर में जाते कोई कभी कभी कंप्लेंट्स होते पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति के बारे में, लगता है ये भी एक इटर्नल ट्रूथ है, तो बताने लगते, दोनों शिकायत करते, फिर सनातन गोस्वामी जो जजमेंट देते वो दोनों स्वीकार करते। मटेरियल विषय में भी इंटरेस्ट लेते थे वो, भक्तों को हेल्प करने के लिए, आपकी खेती कैसे चल रही है, प्रोडक्शन कैसा हुआ इस बार, बच्चों का कैसे, बच्चे क्या अभी पढ़ाई कैसे हो रही है। और जब वो जाने लगते हैं तो भक्त कई बार बोलते हैं आप दो दिन और रुक जाओ, तो सनातन गोस्वामी रुक जाते। और जिस दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ, सारे ब्रजवासी उनको अपने पिता अपने गुरु के समान मानते, इसलिए सबने अपने बाल को कटवा दिया, तो मुड़िया पूर्णिमा बोलते हैं गोवर्धन परिक्रमा, इसीलिए गोवर्धन परिक्रमा करते। एक बार तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की परीक्षा ली जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में तोटा गोपीनाथ मंदिर कितने भक्तों ने देखा है, तोटा गोपीनाथ, यहां पर भगवान बैठे हुए हैं अपने भक्त के लिए। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में एक ही डीटीज है जहां भगवान बैठे हुए हैं, और कोई डीटीज है रूप गोस्वामी प्रभु जहां भगवान, बाकी जगह भगवान लेटे हुए हैं। एक बार एक डिवोटी मजाक कर रहे थे कि भगवान को जब डांस करना होता है तो वृंदावन जाते हैं, और डांस करने के बाद भूख लगती है तो जगन्नाथपुरी जाते हैं प्रसाद खाने, और जब डांस प्रसाद लेने के बाद नींद आती है तो वो रंग श्रीरंगम चले जाते हैं, और जब बिजनेस करना होता है तो तिरुपति आ जाते हैं। सो यहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं छोटा गोपीनाथ, उसके बाजू में एक छोटा सा मंदिर है करीब 100 मीटर की दूरी पे, जिसका नाम है जमेश्वर तोटा। देखिए आपने मंदिर किसी वक्त में जमेश्वर, ये शिवजी का मंदिर है, थोड़ा सा अंडरग्राउंड टाइप है, कुछ करीब मे बी 10-15 फीट नीचे जाना पड़ता है दर्शन के लिए। मैंने देखा है मंदिर है, नीचे जाना पड़ता है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और प्रसाद लिया उन्होंने, और गोविंद को बोले सनातन को बुलाओ, कुछ प्रसाद मैं उनको देना चाहता हूं। अब सनातन गोस्वामी जहां थे इस तरफ, और इधर चैतन्य महाप्रभु, दो रास्ते थे, एक डायरेक्ट रास्ता था जगन्नाथ मंदिर के बीच में, जगन्नाथ मंदिर के बाजू से, यहां पर बहुत अच्छा मौसम था, ज्यादा गर्मी नहीं थी, उस पेड़ों की छाया थी, और दूसरी और एक और रास्ता था समुद्र के किनारे, जहां पर इतनी गर्मी, और जो आप देखे जगन्नाथपुरी की जो रेती होती है मई जून में, अगर आप कभी बिना चप्पल के जाते हैं तो भाग भाग नहीं, यू कैन नॉट रन, यू हैव टू डांस, बस डांस करते हुए जाना, इतनी गर्मी होती है पैर में छाले पड़ जाते। तो सनातन गोस्वामी के पास चॉइस थी, वो इधर भी आ सकते थे, लेकिन वो जानबूझकर दूसरे रास्ते से आए जहां पर उनके पैरों में छाले पड़ गए। तो महाप्रभु पूछे सनातन कौन पथ आईला, कौन से रास्ते से? तो बोले मैं समुद्र किनारे से। समुद्र किनारे से क्यों? ये बहुत सरल रास्ता था, ठंडा रास्ता, वहां से क्यों नहीं आए? वहां पर भगवान जगन्नाथ जी के बहुत सारे पुजारी हैं, और अगर वो मुझे देखते या स्पर्श करते तो वो अपवित्र हो जाते। कितना उनकी नम्रता है, हमारे में से कौन सोचता है कि मेरे कोई देखेगा तो वो डीटी वर्शिप के लिए अयोग्य हो जाएगा। सो हम्बल महाप्रभु सेड वेरी नाइस लाइन, प्लीज रिपीट, प्लीज लिसन केयरफुली। यद्यपि तुमी हो जगत पावना, तोमा देखे पवित्र है देव मुनि गण। यद्यपि तुम्ही हो जगत, यू आर फिट टू प्यूरिफाई द होल यूनिवर्स, आप पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हैं, आपको देखकर देवता मुनि भी पवित्र हो जाते हैं, फिर भी मर्यादा रक्षण ए साधुर भूषण, अपने मर्यादा की रक्षण की एक आभूषण, एक ऑर्नामेंट। एक बार तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं जगन्नाथपुरी में जाऊंगा, भगवान मुझे स्पर्श करेंगे, बहुत अपराध हो जाएगा, ज्यादा अच्छा मैं रथ यात्रा के सामने, रथ के सामने लेट जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, अच्छी गति हो जाएगी। मैं किसी को बताया नहीं, लेकिन महाप्रभु को पता चल गया, महाप्रभु तो परमात्मा है। महाप्रभु ने पूछा सनातन देह त्याग करने से यदि कृष्ण मिलते हैं तो मैं 100 बार देह त्याग करने को तैयार। कृष्ण की प्राप्ति देह त्याग से नहीं होती, सिर्फ भजन से होती है। किससे? भोजन नहीं, भजन। भजन तो है ही, सबको विरह लग रहा होगा। भजन, भजन मीन्स चैंटिंग। और फिर महाप्रभु उनको बताया सनातन तुमने मेरे को समर्पण किया है और अब तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, व्हाट राइट यू हैव टू डिस्ट्रॉय अनदर मैन्स प्रॉपर्टी। आपने दीक्षा ली, दीक्षा काले करे प्रभु आत्मसमर्पण, पूरा समर्पण कर दिया, अब आप कैसे सुसाइड करने की सोच रहे हैं? फिर हरिदास को बोले, हरिदास जस्ट सी दिस पर्सन, ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय अनदर मैन्स प्रॉपर्टी, ये दूसरे की संपत्ति को नाश करना चाहते हैं। मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, मैं वृंदावन में मंदिर निर्माण करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा। आप लोग बोले मैं नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि उनकी माता ने आज्ञा नहीं दी है। जो काम मैं नहीं कर सकता वो मैं आपके द्वारा कर रहा हूं, पुस्तकें लिखना, मंदिरों का निर्माण करना, लुप्त तीर्थ का उद्धार करना, और आप आत्महत्या की सोच रहे हो, मैं कैसे सहन कर सकता हूं? हरिदास ठाकुर हंस के बोले, प्रभु आप पपेटियर हैं, आप सबको नचा रहे हो जैसे आप नचाना चाहो, आप किसके द्वारा क्या कराओगे मुझे कुछ पता नहीं है। महाप्रभु चले गए और हरिदास और सनातन का वार्तालाप देखिए कितना डीप है। हरिदास ठाकुर बोले, सनातन आप कितने भाग्यशाली हो, भगवान ने आपके बारे में बोला कि आपकी शरीर जो है उनकी संपत्ति है, आपके द्वारा इतना कार्य कर, मेरे बारे में कभी नहीं बोला, मैं तो भारत में जन्मा भी कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैं अम्लेच्छ परिवार से हूं। सनातन बोले, आपके बारे में क्या बोला जाए, भगवान का अवतार हुए हरि नाम का प्रचार करने के लिए और आपको नामाचार्य बनाया, प्रतिदिन करे तुम्हें तीन लक्ष्य संकीर्तन, आप 300,000 जप कर रहे हैं और नाम की महिमा दूसरों को बता रहे हैं। आचार करे के हो न करे प्रचार, कुछ लोग होते हैं जिनका आचरण बहुत अच्छा होता है लेकिन वो नम्रता के कारण या किसी कारण ज्यादा प्रचार नहीं करते, कुछ है जो प्रचार अच्छा करते हैं लेकिन प्रचार के बाद फिर गलत काम भी करते। आपके बारे में क्या कहा जाए, आचार प्रचार तुम्ही दुई कर, तुम्ही जगतेर गुरु है, आप पूरे दुनिया के गुरु बनने लायक हो, यू आर फिट टू बी द गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड। इस तरह दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हैं। मैं अकेला बोल के अंत करूंगा, समय हो रहा है। सनातन गोस्वामी एक बार चैतन्य महाप्रभु फिर से उनको गले मिलने जाते हैं, एक बार सनातन गोस्वामी दूर जा रहे होते हैं तो महाप्रभु बोलते हैं, सनातन हरिदास आप देखो आप मेरे बेटे की तरह, आप मेरे पाल्य हो, मैं आपका पालक हूं। जब कोई छोटा बच्चा कोई गलती भी करता है माता पिता बुरा नहीं मानते, जब बच्चा मलमूत्र भी कर देता है तो माता को बहुत खुशी होती है उसकी सफाई करने में, उसको ऐसा लगता है चंदन के समान है। हरे कृष्ण, ये बुक से चंदन के समान। और फिर महाप्रभु बोले कि एक्चुअली आपके शरीर से जब पस आ रहा था, मुझे पता है कैसा लग रहा था वो पस, मुझे ऐसा लग रहा था कि चतुष्म है, इसमें कपूर, कस्तूरी, चंदन और अगुरु, ये चार चीजों का मिक्सचर है, 2 parts, 3 parts और 1 part प्रोपोर्शन। और दूसरी बात है, मैं सन्यासी हूं, अगर मैं भेद करता इसका शरीर गंदा है, मैं इसको टच नहीं करता तो मैं अपराधी हो जाता। भद्र अभद्र ये मनोधर्म है, ये वो भालो ये वो मंद, ये अच्छा ये बुरा, ये मनोधर्म है, और इसमें अगर मैं डिस्टिंक्शन करता तो मैं कृष्ण मेरे को निग्लेक्ट कर देते। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्ते, इक्वल विजन होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि आपका शरीर भगवान की सेवा में लगा है, इसका भक्त का शरीर भगवान की सेवा में लगा है तो फर्क नहीं पड़ता, वो फिर दिव्य बन जाता है भगवान की सेवा में लगने के कारण। और फिर अंत में ऐसे कहकर महाप्रभु ने सनातन को गले लगाया और उनकी पूरी बीमारी दूर हो गई। और हरिदास ठाकुर कहने लगे, भगवान साहब आपका ही प्लानिंग था, आपने उनको गलत पानी पिलवा के बीमार किया और आप लीला दिखाना चाहते थे। तो कैसे हम सनातन गोस्वामी से प्रेरणा ले सकते हैं? 4 वैष्णव हैं जिनसे 4 गुण हैं जो हम सब सीख सकते हैं महाप्रभु की लीला में। हरिदास ठाकुर से टॉलरेंस सहनशीलता, सनातन गोस्वामी ह्यूमिलिटी नम्रता, और रामानंद राय सेंस कंट्रोल धीरता, एंड दामोदर पंडित स्ट्रेट फॉरवर्ड में स्पष्टता। ये 4 बहुत महान वैष्णव, पिछली सनातन गोस्वामी रेलेवेंट है, हमारे संबंध गुरु है। संबंध पहला भक्ति में आगे बढ़ने संबंध होना, जिसके बाद फिर अभिधेय और प्रयोजन। मदन मोहन डीटी उनको कैसे मिले, वो जा रहे थे मधुकरी करने और एक घर में देखा कि कोई ब्राह्मण है, वो एक लड़के को ऐसे धमकी दिखा रहे हैं और उसको अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, और अंदर गए देखा तो वो लड़का कौन है, वो मदन मोहन है। सनातन गोस्वामी ने अभी अभी एक थीसिस लिखा है हरि भक्ति विलास, जिसमें डीटी वर्शिप के रूल्स हैं, और यहाँ देख रहे हैं भगवान को धमकी दी जा रही है। ये तो कोई भी 64 अंग में नहीं है, ना 64 आइटम्स में कहीं नहीं है कि भगवान को धमकी दिखाना। तो बोले प्रभु ये ऐसा मत करिए, दिस इज नॉट प्रॉपर, भगवान अगले दिन स्वप्न में आए, बोले सनातन अब तुम ही मेरी सेवा को स्वीकार करो। और पुरुषोत्तम चौबे को बोला कि आप सनातन को दे दें। सनातन बोले भगवान लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, कोई एकोमोडेशन फिक्स नहीं है, कोई प्रसादम फिक्स नहीं है, गोविंदास तो छोड़ो फॉर लाइफ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान बोले आप जो भी देंगे मुझे स्वीकार है। तो सनातन को क्या खिलाते थे, बाटी में कुछ आटा पानी मिक्स करके वो गर्म करते हैं और बिना नमक के, स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये स्पाइसी है ये नॉन स्पाइसी है, लेकिन सॉल्टलेस तो कोई भी नहीं लेता। सॉल्टलेस प्रसाद बनाइए, बहुत 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 कम में पैसे में, कम पैसे में ही हो जाएगा, बहुत बच जाएगा। लेकिन भगवान ने बोला एक महीने बाद कुछ समय बाद, सनातन आप रोज अच्छा बांटते हैं, थोड़ा सा नमक भी दे दो। आप नमक मांग रहे फिर शक्कर मांगोगे, मैंने पहले ही बताया था हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है। और बाद में आप जानते हैं कि एक बोट फंस जाती है और सनातन के प्रार्थना से बोट बच जाती है। तो जो ओनर थे इसका नाम था रामदास कपूर ना या कृष्णदास कपूर, कपूर सम कपूर फैमिली है ना, ये वो वाला कपूर नहीं है, ये पंजाब के कपूर है। वो एक्चुअली मुल्तान से थे, मेरे लिए रेलेवेंट है क्योंकि मेरे माता पिता जो है वो भी मुल्तान से हैं ओरिजिनल, शायद उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी, सम कनेक्शन है ना फुली। बोलने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नोबडी विल चेक। तो ये जो व्यापारी था उसने अपने सारे जो सामान था सब बेच दिया और उससे मंदिर बनाया, मदन मोहन फर्स्ट टेम्पल वृंदावन। और कुछ लोग बोलते हैं नमक भी दिया भगवान की सेवा। तो सनातन गोस्वामी सच वंडरफुल, कितने उनके, हमारे पास समय नहीं है, आप सब जानते हैं कैसे महाप्रभु के डीलिंग्स थे। महाप्रभु उनको 2 महीने तक उपदेश किए ना, 2 मंथ्स वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पे 2 महीने तक बहुत सारे कृष्ण के भक्ति के बारे में। और आज के जो श्लोक में वो पॉइंट जीवे रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास को स्पेशली बताते। एक सनातन गोस्वामी को एक कहानी बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने आते हैं, यू नो दैट स्टोरी। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कौन है ब्रह्मा आईला, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे कौन है ब्रह्मा, माजा शिवाय कोणी ब्रह्मा है काय, मेरे सिवाय कौन ब्रह्म है। तो बताते हैं कि जब आके बोलो 4 सिर वाले सनत कुमार के पिताजी आए, तो भगवान बोलते आने दो कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान ने पूछा ब्रह्मा सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो बोले वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आपने बोला कौन ब्रह्मा आया, मेरे सिवाय कौन ब्रह्म है। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी बुलाए, 10 सिर 1000 सिर, कितने सिर थे टोटली, 1 with 10 million हो सकता ना, 1 लाख भी हो जाए। इमेजिन पुणे में कोई आते 1 लाख वाला व्यक्ति, पूरा ट्रैफिक कैसे हो जाएगा, सबको यू टर्न लेते हैं, कहाँ पे यू टर्न, इज अनइमेजिनेबल हाउ इट इज पॉसिबल। और सारे ब्रह्मा प्रणाम किए, सब ने पूछा भगवान क्या आज्ञा है, कोई आज्ञा नहीं है, खाली आप सबको एक साथ देखना था, सब कुछ ठीक है। बोले हाँ प्रभु आपने अवतार लिया, सारे असुरों का अंत हो गया। अरे कहानी किस लिए है कि भगवान कितने महान है, कितने सारे ब्रह्म। और भी एक फेमस कहानी है मृगरारी हंटर, वो शूटिंग जानवरों को तड़फा रहे थे और नारद मुनि के कॉन्टेक्ट में आ गए, तो वो एक चींटी को भी मारने में हिचकिचा रहे थे। ये चेतन आपको ये कहानी बताते हैं ना, फॉर एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ साधु संघ, साधु संघ के ऐसे सनातन के फेमस मच्छर की कहानी है। कहाँ पे थे मच्छर आते थे बहुत, चकलेश्वर महादेव मानसी गंगा, तो किताबें लिख रहे थे और मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत गुड नाइट ट्राई किया लेकिन गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, ऑल आउट लगाया काम नहीं कर रहा था। फाइनली सनातन चकले, फिर सोच रहे थे कि मैं चेंज करता हूँ रूम, चेंज करता हूँ दूसरी जगह जाता हूँ। देखो शंकर जी इतने एडवांस्ड हैं, तो हाइएस्ट ग्रेटेस्ट वैष्णव, और फिर भी वो सनातन गोस्वामी का संग चाहते हैं। यानी जो बोलते हैं ना हमारे से सीनियर का संग मांगना चाहिए, लेकिन सनातन जी दिखा रहे हैं कि हमारे से जूनियर का भी संग वो मानते हैं। सनातन गोस्वामी तो उनके कंपेरिजन में मच इज अ जीवात्मा, शिवजी शिवजी इज शिव तत्व, लेकिन शिवजी सनातन गोस्वामी बोलते हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं बहुत सारे मच्छर, नहीं थोड़ा 2 दिन रुक जाओ। और शिवजी उसी दिन एक मीटिंग बुलाते हैं और जो मच्छरों के जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव इंचार्ज के बोलते हैं कि जो डिसाइड करते हैं कौन सा मच्छर कौन से रूम में जाएगा, कि कल से कोई मच्छर भी नहीं जाएगा। और हमारे पुणे के जो सीनियर भक्त हैं वृंदावन प्रभु, मेरे बहुत क्लोज मित्र, कई वर्ष हम लोग साथ में ट्रेवलिंग करते थे, हम दोनों कई बार मानसी गंगा में रात के समय बिना किसी चादर के रात को सोते हैं, तो कोई मच्छर अभी भी नहीं आता, तो उनका ऑर्डर अभी भी स्टैंडिंग ऑर्डर है, मे बी टिल द एंड ऑफ कलयुग और व्हाटएवर। Or just one more line. Any other story, you know, until before? Sanatan Goswami. हाँ, एक बार वो खीर बनाते हैं, प्रसाद देने से पहले कहानी सुनने से खीर खाने का लाभ मिलता है। रूप गोस्वामी एक दिन सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाते हैं ना, सनातन गोस्वामी का व्यास पूजा होता है तो उनके पास खीर के लिए खाली एक ही कमी होती है, चावल दूध और शक्कर, बाकी सब होता है उनके पास। और वो प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, कृष्ण तो अचानक एक बहुत सुंदर गोपी आती है, बाबा बाबा ये लो चावल, आटा चावल लो, शक्कर लो, और खीर बनाते हैं। और खीर जब भोग लगा के सनातन गोस्वामी को देते हैं तो वो खीर को देखते ही, स्पर्श करते ही उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं, अष्ट विकार आने। सनातन बोलते हैं खीर इतना स्वादिष्ट भी है, ये कहाँ से लाए? तो जब उन्होंने बताया, वो इसका वर्णन करो, ये वर्णन किया तो बोले तो राधा रानी के, प्रभुपाद का लेक्चर है। प्रभुपाद से सनातन बिकेम एंग्री, सेड यू आर किलिंग मी, आप मुझे मार रहे हो कि राधा रानी से सेवा ले रहे हो। लेकिन खीर बहुत अच्छा है, खा के देखिए। तो उन्होंने खीर खाए, बोले ओ गलती हो गई, लेकिन खीर बहुत अच्छा है, सो दे वर एंजॉयिंग दिस खीर। देयर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दिस सनातन गोस्वामी, हमेशा हम उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। वंदे रूप सनातन रघु युगोशी, स्पेशली सनातन गोस्वामी से नम्रता के लिए। नम्रता फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, अगर नम्रता हो जाए तो जप अच्छा हो जाए, जप अच्छा हो जाए तो फिर सब भगवान की प्राप्ति हो सकती। Let us pray for the mercy of Sanatana Goswami. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shila Sanatana Goswami ki jai, Shila Prabhupada ki jai.